नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% वृद्धि को मंजूरी दी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 2 नए आधुनिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। जनवरी से सितंबर के बीच दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉकडाउन अवधि को छोड़कर 2018 से 2025 तक का सर्वश्रेष्ठ दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह में भाग लिया और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में मुकेश नीलावल्ली ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 87,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा और शिक्षकों के 4,600 अतिरिक्त पद सृजित होंगे।
केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग जिलों में थे और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मिशन 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए है।
आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सिस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सिस का बेटर सीड लेना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह में आज भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संघ के संस्थापक डॉ हेडगवार से लेकर वर्तमान सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत तक सभी ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संघ द्वारा किया गया काम सराहनीय है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और एक सामान्य व्यक्ति को भारत का एक राजदूत बनाने के लिए जो काम किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इस यात्रा को हम प्रणाम करते हैं। और जिस प्रकार से आज भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर डाक टिकट जारी किया है, सिक्का जारी किया है, जितनी बातें बताई हैं वो सब कुछ प्रत्येक भारतीय के लिए आज खुशी का सर है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी स्वयं सेवक संघ की सेवा भावना की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सिखाया और 100 साल से संघ जो सेवा भावना का काम कर रहा है उससे सीखने को ये मिले कि आगे भविष्य में भी हम स्वयं सेवक है, सेवा भावना रखनी चाहिए, सेवा भावना रखेंगे और काम करेंगे।
इस अवसर पर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज नई दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले आज दोपहर उनके पार्थिव शरीर को भाजपा प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रोफेसर मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रोफेसर मल्होत्रा का पूरा जीवन देश और समाज के प्रति समर्पण, संघर्ष और त्याग का अतुलनीय उदाहरण है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने संगठन के सदस्यों में एकता और कर्तव्य की भावना जागृत की। वरिष्ठ भाजपा नेता का कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था। वो 93 वर्ष के थे। प्रोफेसर मल्होत्रा के निधन पर उनके सम्मान में आज दिल्ली सरकार के एक दिवसीय राजकीय शोक रखा गया। प्रोफेसर मल्होत्रा दिल्ली के पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बीच दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कोविड के दौरान 2020 के लॉकडाउन अवधि को छोड़कर दिल्ली ने 2018 से 2025 तक का अपना सर्वश्रेष्ठ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया है। चालू वर्ष के मॉनसून का औसत सूचकांक भी पिछले 8 वर्षों के दौरान सर्वश्रेष्ठ रहा। 2025 में जनवरी से सितंबर तक किसी भी दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक नहीं हुआ। इस अवधि में दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 सांद्रता रहा, जो 2018 के बाद से सबसे कम स्तर पर है। मंत्रालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयास और तेज किए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 2 नए आधुनिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए श्री सिरसा ने DPCC से 3 महीने के भीतर बिड एवेल्यूशन और लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के लिए कहा है, जिससे काम शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जा सके। श्री सिरसा ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली के अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रतिदिन लगभग 40 मीट्रिक टन बायोमेडिकल कचरा पैदा करते हैं, जिसके लिए शहर को समय पर और सही तरीके से इसके निपटान के लिए आधुनिक और भरोसेमंद ट्रीटमेंट सिस्टम की जरूरत है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस प्लांट की मदद से अब प्रतिदिन करोड़ों लीटर गंदा पानी ट्रीट होकर यमुना में जाएगा, जिससे नदियों की शुद्धता और दिल्ली वासियों का स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये प्लांट यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत बनाया गया है, जिससे सिविल लाइन्स, पहाड़गंज, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर और ओखला जैसे 16 प्रमुख क्षेत्रों को साफ पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 85% फंड केंद्र सरकार ने दिया है और इससे दिल्ली की जनता को वास्तविक बदलाव देखने को मिलेगा। सकलैन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार निखिल कुमार।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल के दौरान ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाने वाले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शीघ्र ही 10 कर्मियों के परिजनों को ये अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। कोरोना काल में काम कर रहे कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के इतिहास के सबसे निस्वार्थ और प्रेरणादायी अध्यायों में इन्हें दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि एक संवेदनशील और करुणामय शासन के मॉडल का प्रतीक है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर कर दी है। एक रिपोर्ट।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि UPS के तहत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, त्यागपत्र पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न हितधारकों से अनुरोध मिले थे कि इन बदलावों के मद्देनजर कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि इसलिए UPS के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर करने का निर्णय लिया गया है।
प्रादेशिक समाचार के लिए सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज राष्ट्रीय राजधानी के INA दिल्ली हाट में विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के खादी संस्थानों और ग्रामोद्योगी इकाइयों के 86 स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। इनमें साड़ियां, रेडीमेड वस्त्र, हस्तशिल्प वस्तुएं, हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद, चमड़े के सामान, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद, अचार, मसाले, साबुन, शैंपू, शहद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज गांधी जयंती मेला आयोजित किया गया। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में इस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चरखा भी चलाया। महापौर ने कहा कि ये मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सेवा के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जन्म दिवस संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और लोगों को सत्य तथा न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का त्योहार सभी को क्रोध और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करने और साहस तथा दृढ़ संकल्प जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियों को अपनाने की शिक्षा भी देता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की ये त्योहार सभी को एक ऐसे समाज और देश के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा जहां सभी लोग न्याय, समानता और सद्भाव के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को महानवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा का पावन अवसर है तथा ये जीवन में सिद्धि, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि माँ ने असुरों का संहार कर धर्म और सत्य की स्थापना की जिससे ये दिन शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गया है।
हमारे देश में हमेशा से बेटियों में, कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। वर्षों से हम लोग कन्या पूजन का ये त्यौहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का प्रभार संभालने के बाद भी मुझे ये लगता है हमेशा कि हमारी इन बेटियों में ही देश का और समाज का भविष्य है, तो इनको जितना हम प्यार से सहेजेंगे, जितना इन्हें आगे बढ़ाएंगे, देश का भविष्य उतना ही आगे बढ़ेगा। आज अपनी इन बेटियों के बीच में कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति है।
जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के अंतिम दिन आज मुकेश नीलावल्ली ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मुकेश ने कुल 585 अंक के साथ स्वर्णिम सफलता अर्जित की। रूस के अलेक्जेंडर कोवालेव ने 577 अंक के साथ रजत पदक और भारत के ही साहिल चौधरी ने 573 अंक के साथ देश के लिए कांस्य पदक जीता। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% वृद्धि को मंजूरी दी। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 2 नए आधुनिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। जनवरी से सितंबर के बीच दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉकडाउन अवधि को छोड़कर 2018 से 2025 तक का सर्वश्रेष्ठ दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह में भाग लिया और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में मुकेश नीलावल्ली ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।